ओम शांति। माया का जादू किस किस को लगा हुआ है? जिसको लगा हाथ खड़ा करो। अभी बाबा का जादू है, तो बाबा का जादू अगर लगा हुआ है तो उसकी निशानियां देखेंगे हम। और माया अपना काम कैसे करती है, माया का चक्रव्यूह जो है कैसे हमको उसमें फंसा देती है, अलग अलग रूप से आती है। अगर उसके 100 रूप हैं, अगर हमको पता चल जाए कि ये माया के 100 रूप हैं और हम उसको जीत लेते हैं, समझ लीजिए, तो फिर माया 101 रूप में आएगी, नए रूप में आएगी। तो माया के हर रूप का ज्ञान चाहिए। अंत समय तक माया अपना पूरा जोर लगाती रहेगी। आज का जो वरदान था, कौन सा वरदान था? माया जीत बनने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? सुदर्शन चक्कर घुमाना पड़ेगा। सुदर्शन अर्थात, और एक है सो को अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन करना, और दूसरा चक्कर का ज्ञान जानना अर्थात सुदर्शन चक्कर फिराना घुमाना, तो माया जीत बन जाएंगे। और क्या था उस वरदान में? ये तो दो बातें होगी, उसके अलावा क्या था? उसके अलावा दो तीन बातें और भी है। 63 जन्म माया के अनेक प्रकार के चक्कर, तो उसमें बाबा ने तीन बातें बताई। कौन सी? एक देवान का, संबंधों का, समस्याओं का चक्कर। ये तो खाली एग्जांपल दिया बाबा ने, बाकी बाबा कितने विस्तार आप करो कितने चक्कर है। तो ये 63 जन्मों का चक्कर जो है, इससे मुक्त हो जाए, अनेक प्रकार के चक्करों से मुक्त होकर माया जीत बन जाएंगे। तो आज की मुरली सारी भी लगभग इसी पर थी कि तुम पहले ये थे, अब ये बन गए हो। बीच बीच में क्या हुआ वो बाबा ने सब बताया। ये कौन सा खेल है आज की मुरली में था? ये खेल कौन सा है? बाजोली का खेल है। पहले तुम क्या थे, अब क्या बन गए। और ये खेल कहां से शुरू होता है? माथे से शुरू होता है, मस्तक पहले लगाते ना, तो ये आत्मा से शुरू होता है। अर्थात पहले माया अटैक कहां करती है? प्रवेश तो वो आत्मा में करती है ना, है ना? कहा जाता है कि रावण में आत्मा है, रावण में आत्मा नहीं है, आत्मा में रावण है। तो रावण वास्तव में अंदर ही है, और वो किस रूप से? कई प्रकार की कमजोरियां हैं जो हमें प्रभावित करता रहता है समय समय पर। जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो वो हमको पकड़ लेता है, माया अपने जाल में फंसा लेती है। विकारों का जादू, जो बाबा ने कहा कि विकारों का जादू लग जाता है, आकर्षण है उसमें, अट्रैक्शन है, लगाव है, अटैचमेंट है, मुंह के धागे हैं, जो गीत में सारी बातें थी। तो माया कब कब आती है उस पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे। और माया क्यों आती है? तो सबसे पहले है, माया क्यों आती है? जब हम, जैसे शेर भी, अगर बहुत सारे जानवर हैं और किसी पर अटैक करना, तो क्या करता है वो? पहले तो अटैक करते हो, देखा किसी ने? सबने देखा होगा, माताओं ने देखा, सबने टीवी देखा हुआ है, अकेला करता है वो, है ना? कल बाबा ने टीवी के बारे में बोला था, टीवी देखो कौन सा, 84 का चक्कर उस टीवी में देखो, और उसका एंटीना ठीक होना चाहिए, कनेक्शन ठीक होना चाहिए। अगर एंटीना ठीक नहीं है तो क्या आएगा? फागी आ जाएगी। और फागी में क्या होता है, जो साकार मुरली में बाबा कहते हैं, फागी में गुम हो जाते हैं, फिर कोई गाइड मिलेगा तो छोड़ने आएगा। तो हम भी माया की फागी में फंस गए हुए हैं। तो सबसे पहले माया हमको अकेला करती है, अकेला करती है। इसलिए बाबा कहते, कंपनी बाप की कंपनी, कंपेनियन बाप को कंपेनियन बना के रखो। संसार में कंपेनियन बनाते हैं, विदेशों के लिए बाबा ने परसों की मुरली में कहा था, वो कब विदेशों में अकेला रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन अंत में जब उनका बुढ़ापा आ जाता है तो कंपेनियन बनाते हैं। किसके लिए? बुढ़ापे में साथ के लिए। उनमें विकारों की बात नहीं होती, बाबा ने कहा था उसमें विकारों की बात नहीं है, केवल सार संभाल के लिए, साथ के लिए बनाते हैं, ताकि जो प्रॉपर्टी होती है किसी को दे के हवाले करके जाएंगे। तो सबसे पहले माया अकेला करती है, हमको बाबा से अलग कर देती है और हमारे पर अटैक करती है। किस किस रूप में? अनेक प्रकार के, चाहे वो संकल्पों के रूप में है हम या हमारी पुराने इसके पिछले जन्म की स्मृतियां। इसके पिछले जन्म की अर्थात इसके पिछले ने माना शूद्र जन्म की, ये तुम्हारा नया जन्म है। तो शूद्र जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे उभरने लगती है, क्योंकि बाबा ने कहा ना 63 जन्म के संस्कारों का प्रभाव आत्मा के ऊपर है, तो उसको उतारना सहज नहीं होता, उसके लिए मेहनत है। अगर हमारे पास मेथड है तो सहज है, अगर मेथड नहीं है तो मुश्किल लगता है। सहज भी है मुश्किल भी है, लेकिन वो हमारे हाथ में है कि हम उसको सहज तरीके से पार करते हैं उन परिस्थितियों को या मुश्किल तरीके से। तो सबसे पहले हमको माया अलग करती है, पिछली स्मृतियां सामने हमारे टीवी पर आती है, मानस पटल पर, कि या कोई सीन देख के आएंगी या किसी से बातचीत करते आएंगी या कोई संबंध संपर्क में आते हैं तो उस समय आएंगी माया की स्मृतियां। तो माया हमको अकेला करके फिर अलग अलग चक्र भी रच के हमको अटैक करती है। जैसे अभिमन्यु चक्र भी में फंस गया, उसी तरह आत्मरूपी अभिमन्यु भी माया के चक्र में फंस जाता है, फिर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप को अकेला नहीं समझो, साथी को हमेशा साथ रखो, हर सेकंड रखो साथ में, क्योंकि माया हर सेकंड हमारे पीछे पड़ी है। कौन से समय में एकदम वो एक खाली स्मृति का खेल है, एक सेकंड में हम बाबा का बने तो एक सेकंड की तो बात है ना, एक सेकंड के हमने डिसीजन कर लिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, एक सेकंड की बात है। तो माया भी एक सेकंड में अटैक कर सकती है, इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी अकेले मत रहो, हमेशा उसको साथ रखो। और उसको साथ रखना अर्थात क्या, बाबा को अपने साथ रखना अर्थात क्या, वो स्थूल में तो है नहीं, दिख रहा है, हाँ निरंतर उसकी सेवा में लग रहे हैं और उनकी याद में रहना, और क्योंकि याद ही तो किस जाती है, तो याद सहज करनी है। सहज माना अति सहज, अति 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 सहज करना उसको। जैसे हमारा किससे अगर प्रेम होता है तो उसको याद करना मुश्किल थोड़ा लगता है, स्वप्न में वही दिखाई देगा। तो बाबा से अगर हमारा प्यार है तो स्वप्न में वही दिखा देना चाहिए, तो वो सहज कैसे होगा, जिसके लिए तो हम फिराक में रहते हैं कि हमारा योग नेचुरल हो जाए, सहज हो जाए, स्वतः। कल बाबा ने बोला था ना, कल की शाखा अव्यक्त वाणी में, जो चीज सहज होती है वो कैसे होती है, निरंतर होती है, अंतर नहीं होता उसमें कोई भी। तो अगर हमारे ये सहज योगी जीवन है तो निरंतर है वो, याद हमारी सहज है तो निरंतर होती है। तो निरंतर कैसे होगी और सहज कैसे होगी, अटेंशन और कोई संबंध जोड़ दें, और बाकी दूसरे कोई एक संबंध, अच्छा सारे संबंध, सारे संबंध कितने हैं, हाँ एक बहन जी तो बता रही थी, मैं तो उसको स्टूडेंट, मैं टीचर और उसको स्टूडेंट बना के पढ़ाती हूँ, वो भी अच्छा है। तो एक देखो नई नए तरीके से बाबा को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते तो हैं लेकिन सामने पढ़ने वाला भी तो ऐसा ही ना, तो बाबा तो आज्ञाकारी है, आज ही था बाबा आप बच्चों का क्या है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। आज बाबा की निर्माणता कैसी, कितनी गहरी थी, कि जैसे सुनने वाला अगर दिल से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, तो उसका अहंकार चकना चूर हो जाएगा। अर्थात अगर बाबा ये बात हमारे सामने रख रहे हैं तो हमारे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ अभी भी, बोला बच्चे टट्टी कर देते हैं तो उसको बाप उठाते, वो कितना दिल को लगता है। भगवान आकर हम बच्चों के सामने इस तरह के एग्जाम्पल दे के, और वो एग्जाम्पल सुनने के बावजूद भी हमारे पुरुषार्थ में जान ना आए, कोई दम ना आए, ताकत ना भरे, फिर भी ठंडा चलते रहे, तो कैसे बच्चे ठहरे हम, उसको क्या कहेंगे। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में थोड़ा ऑक्सीजन भरनी है, ताकत भरनी है। तो अगर हम बाबा की उसको याद करना, अर्थात जो हमको वो बताता है ना, 1969 की मुरली है 21 जनवरी की, किसी ने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वो मुरली जरूर पढ़ने का, तो उसमें पढ़ा कि बाबा जब 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया तो चले गए, तो थोड़ी हलचल तो हो जाती है स्वाभाविक रूप से। तो बाबा ने कहा जब 21 जनवरी को बाबा पहली बार अव्यक्त रूप में आए, तो बाबा ने कहा कि बाप चला गया ऐसा नहीं है, वो तो कमरा बदला, लेकिन अपना अखंड अटल सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वो जो कह के गया हुआ है उसको करके दिखाओ। बाबा को याद करना अर्थात उसकी पढ़ाई को पढ़ना, ये मुरली भगवान है, मुरली केवल मुरली नहीं है, मुरली भगवान है, मुरली परमात्मा है, उसमें तो सारा वो समाया हुआ है, वो जो कह के गया वो हमारे लिए वही तो है, उसी को तो हमको करना है। सामने हमारे घर में माँ बाप बैठे हुए हैं और उनकी बात को मान ही नहीं रहे हैं, उन्होंने हमको लिख के भी दिया कि तुमको ये काम कर रहे हैं और हम उनको कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको, उस माँ बाप के लिए हम कैसे ठहरे। तो भगवान तो जो हमको कह गया वो करना पड़ेगा ना, केवल उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, उसका ज्ञान अनिवार्य है। वो जो कह के गया हुआ है वो तो हमेशा अंग संग है, भाव ने कहा अंत में हम सब इकट्ठे चलेंगे, तो उसकी जो मुरली है उसका जो ज्ञान है वो ही हमारे लिए भगवान है, तो उसका हम कितना कदर करते हैं। तो हमारी याद सहज तब होगी जब हम उसके ऊपर हमारी नजर पड़ेगी, उसको बार बार देखेंगे मुरली में क्या क्या कहा, हर वाक्य को नए नए रूप से देखेंगे कि हमारे लिए वो क्या क्या कह के गया हुआ है। आज की मुरली में था कि तुम्हारी तो शुभ भावना है, लेकिन तुम्हारी शुभ भावना का संसार वाले विरोध करते हैं। कौन सी शुभ भावना थी? पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, और इस शुभ भावना का विरोध करते हैं, तो या तो हमने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया उनको, इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो नया नशा होगा ना सबको, तो सीधा कहते सीधा सीधा ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता जाता है। तो ज्ञान प्रस्तुत करने का भी तरीका बाबा ने कल वरदान में कहा था ना, नवज समय और धरनी देकर ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान साधारण नहीं है, बहुत कीमती है, और इस ज्ञान को अगर हीरा किसी बंदर के हाथ में दे दे क्या करेगा, वो फेंक देगा। तो हमारी परखने की शक्ति भी, हमारी जो निर्णय करने की शक्ति, सामने कोई भी आत्मा उसी समय हम उसको परख लें, उसकी आंखों में देख लेके इसका अंदर का स्वभाव, इसका सोच क्या चल रही है, तो हम उसको सामने को उसी तरह ज्ञान दे सकते हैं। तो ये अकेला जब माया हमको करती है तो वो अटैक करती है, तो हमको अकेले नहीं होना है, कोई ना कोई ज्ञान का चिंतन, कोई ना कोई संबंध का, जो जैसे बताया उस संबंध का उसका अनुभव करना है, और एक बार अनुभव कर ले तो बार बार करने की जरूरत नहीं, नेचुरल हो जाएगा फिर वो। और संबंध अनुभव करने का सबसे बेस्ट तरीका उसको लिखना है। पुराने जमाने में जो चिट्ठियों में कितनी रस होता था, है ना, अगर किसी को चिट्ठी आती थी दूर से, कोई विदेश में है कहीं, बहुत घर से दूर बैठा हुआ है, तो घर वाले उसकी चिट्ठी का इंतजार करते थे और चिट्ठी को बार बार पढ़ते थे। अच्छा, अगर वो नहीं पढ़ने आती तो क्या करते थे, पड़ोसी से पढ़ाते थे। तो अगर मुरली नहीं पढ़ने आती तो क्या करना चाहिए, तो पढ़ानी चाहिए, और जो पढ़ेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो कितनी वो संसार में लौकिक में कितनी उत्कंठा होती है अपने संबंधों को निभाने के लिए, लेकिन बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध को निभाने के लिए क्या उतना प्रयास करते हैं, उतनी हमारे अंदर में आग लगी है, उतनी तड़प है। तो ये है, कभी भी अकेला नहीं, किसी न किसी रूप से बाबा से जुड़े रहना है। दूसरा, माया तब अटैक करती है जब हम व्यस्त हो जाते हैं, एकदम बिजी, अर्थात भले सेवा कर रहे हैं लेकिन पूरा कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं उसमें, पूरा वो कर्म उस सेवा में निमित्त भाव खो जाता, कहीं भी निमित्त भाव जैसे प्राय लोप हो जाता है, बहुत दूर है, जैसे बाबा ने कहा ना कि तुम देवता हैं प्राय लोप हो गए, चित्र केवल यादगार है उनकी, तो ऐसे भी सेवा में कहीं वो हमारा निमित्त भाव प्राय लोप तो नहीं हो जाता है, पूरा कर्म कॉन्शियस, और उस सेवा में अगर निमित्त भाव नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं स्वार्थ पैदा होने लगता है, कहीं ना कहीं उसमें मान शान बढ़ने लगता है। बताया ना गीत में, मान शान के रूप में भी माया कैसे आती है, ना मान शान की उसमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर इच्छा बढ़ने लगती है, और जब बड़ा रूप ले लेती है तो पता चलता है अब तो माया ने पकड़ लिया, और फिर छूटना मुश्किल होता है, फिर पश्चाताप होता है। एक तो हमने समय पहले गवा दिया कि उस सेवा को हमने निमित्त भाव बनकर नहीं किया, और उसमें पूरा अपना स्वार्थ छिपा रहा, पूरा कर्म कॉन्शियस में रहे, और फिर धीरे धीरे जब माया बड़ा रूप ले लेती है तो फिर और ही अंदर पश्चाताप होता है, फिर हमको स्मृति आती है कि ये तो हम कर सकते थे बीच बीच में। इसलिए बाबा कहते हैं अति के समय में अंत की याद आए, जितना बिजी हो जाओ उतना एक सेकंड में डिटैच भी हो जाओ, और वही तो समय चल रहा है अभी, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवाएं तो बढ़ती जानी है, परिस्थितियां भी बढ़ती जानी है, चाहे वो लौकिक संसार में चाहे अलौकिक संसार में, नए नए तरीके से सेवाओं के रूप भी बढ़ते जा रहे हैं, परिस्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं, तो अति के रूप में भी हमें अंत की स्मृति रहे, क्योंकि ये हमारी यात्रा है, यात्रा पर रुकना नहीं होता है, रुके तो क्या होगा, हार जाएंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी जानते हैं कि जैसे कैसे कछुआ पहले पहुंच गया, तो उसी तरह से यात्रा पर हम जा रहे हैं, इस यात्रा पर हम कहीं ठहर न जाएं, यात्रा पर हमको कोई चीज अपनी तरफ बांध के न रख ले, क्योंकि यात्रा में साइड सीन तो अनेक प्रकार के आएंगे, लेकिन वहां हमको रुकना नहीं है। और ये लंबी यात्रा है और अकेले की यात्रा है, लेकिन अकेले में उसको साथ रखेंगे तो हमारा वो गाइड है, लिबरेटर है, वो हमको हर चीज से लिबरेट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा। अगर बिना गाइड के यात्रा पर कहीं घूमने फिरने जाते हैं और गाइड नहीं करते हैं कोई, तो उसको वहां की गतिविधियों का, वहां की जो इतिहास है, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। केवल ये कहेंगे कि हाँ माउंट आबू गए थे देखने के लिए, लेकिन क्या देखा वो नहीं बता पाएंगे, उसकी जानकारी नहीं, तो उसका सुख नहीं ले पाते हो। तो उसी तरह बाबा हमारा गाइड है, सच्चा सच्चा गाइड है, सच्चा सच्चा रास्ता दिखाने वाला है। अगर वो हमारे साथ में है तो हर समय हमारी वो रक्षा करता रहेगा, हमें सही तरीके से गाइड करता रहेगा। क्योंकि बाबा ने कहा देहधारी तो क्या है, विनाशी है, एक बाप ही है अविनाशी है, अनंत है, और आत्मा भी अनंत है अविनाशी है, और उस अविनाशी आत्मा को जो सच्चा रास्ता दिखाने वाला भी अविनाशी पिता चाहिए। आत्मा को भी प्यास अविनाशी है, और उस प्यास भी, उस प्यास को बुझाने वाला अविनाशी भगवान ही बुझा सकता है। तो निरंतर उसको साथ रखना, अलग अलग उसमें गाइड भी एक संबंध है, वो हमारा गाइड भी है तो गार्ड भी है, सुरक्षा भी करता है, छत्रछाया के रूप में। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने गिफ्ट दी ना, कौन सी, दिव्य बुद्धि, उसमें एक गिफ्ट थी छत्रछाया। तो कोई वो शत्रु ऊपर से उड़ तो नहीं जाता, केवल छाया छाया रह जाती है, और शत्रु उड़ गया और जब पहुंचेंगे घर में तो देखेंगे ऊपर तो आई नहीं कुछ भी। तो शत्रु उड़ना नहीं चाहिए, कौन सा शत्रु है वो खुद ही क्रिएट करना है। अष्ट शक्तियों का चक्र हमारे ऊपर चल रहा है, अर्थात बुद्धि में वो स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो बाबा हमारा गाइड है, तो हमको इतना बिजी भी नहीं हो जाना, सेवाएं तो करनी है, दिल से करनी है, प्यार से करनी है, पूरा हड्डी हड्डी देके करनी है, लेकिन उसमें कहीं हमारी सेवा करते हुए स्मृति न खो जानी चाहिए। वो सेवा केवल एक कर्म नहीं होने जाना चाहिए, उस सेवा में योग शामिल होना चाहिए। क्योंकि हमारा अधिकतर अगर हम अपने आप को जांच करते हैं तो सारे दिन में हमारा टाइम कर्म क्षेत्र पर ज्यादा जाता है, सवेरे से शाम तक, तो और कर्म क्षेत्र पर ही ऊपर नीचे स्थिति होती है। अभी हम सब काम से फारिग होकर बैठे हैं, अभी थोड़ी माया आ रही है, अभी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में हमारे पुरुषार्थ का टाइम तो जब हम कर्म क्षेत्र पर कदम रखते हैं तो हमारा शुरू होता है। अदरवाइज अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन लिया, शाम का योग कर लिया, ज्ञान चर्चा कर ली, वो तो एक नेचुरल नेचर होगी। ये वास्तविक पुरुषार्थ हमारा जब हम कर्म क्षेत्र पर सबके संबंध संपर्क में आते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो मन को अचल रखना। उस समय जो ज्ञान हमने अगर सारे दिन में बार बार अभ्यास किया हुआ है, बिजी रहते हुए भी डिटैच होने का अभ्यास किया हुआ है, उसको साथ रखने का अभ्यास किया हुआ है, अशरीर बनने का अभ्यास किया हुआ है, तो हमें यथार्थ कर्म करते हुए भी उसके साथ का अनुभव करते रहेंगे, तो हमारा कर्मयोगी जीवन बन जाएगा। और जो स्वतः सहज होता है वो फिर स्वतः बन जाता है, स्वतः निरंतर हो जाता है, और लंबे समय की आदत है, एक दिन की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमको अगर दिन में असफलता मिलती है, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जो हम सोचे वो तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा तो कर रहे हैं ना, थोड़ा अटेंशन रखते करते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग है, उसकी नजर है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार जितना हमको पुरुषार्थ करना चाहिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उस पर पूरा नजर रख रहे हैं, तो उसकी हमारे पर ब्लेसिंग बनी रहेगी। अगर हम प्रेज ही नहीं करेंगे, कल की मुरली में था ना प्रेज के बारे में, तो प्रेज ही नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी दवाइयां खा लो काम ही नहीं करेंगे, जितनी मर्जी मुरलियां पढ़ लो नहीं काम करेंगे। प्रेज तो थोड़ा रखना पड़ेगा ना, अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम हो सके प्रेज रखना है, तो इतना भी बिजी नहीं हो जाना है कि उसमें हम अपने अलौकिकता को खो दें, अपनी अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण लगा दें, कहीं माया की ग्रहचारी हमारे पर बैठ जाए। तो यह है कि इतना बिजी भी नहीं हो जाना है, बिजी होते हुए भी इजी रहना है, सारा कर्म करना है लेकिन उसमें भी इजी रहना, कर्म किया और फिर डिटैच, फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और वो कर्म ठीक होगा अगर हम बाबा की याद में करेंगे, ठीक होगा। और बाई चांस इधर उधर होता है तो हमने कई बार देखा है बाद में जैसे हम कर्म क्षेत्र से बाहर निकलते तो तुरंत याद आता है यहां कुछ गड़बड़ हुई है, और फिर उसको आगे के लिए ठीक करना और उसको स्वीकार करना है, ये मेरी गलती है, और आगे से उसके ऊपर फिर हमको पूरी नजर रखनी है। तो ये है कि सेवाओं के क्षेत्र में भी हमको इतना बिजी नहीं हो जाना कि बाबा की याद भूल ही जाए जैसे। तीसरा है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा प्रवृत्ति, सीखने की ललक। क्या होता है ज्ञान मार्ग में हम आते हैं, दो चार साल चलते हैं, मुरलियां सुनते हैं, एक डेली रूटीन बन जाती है और हमको पता चलता है कि सारा ज्ञान हम समझ गए, अभी बाबा रोज रोज भाई तो सुना रहे हैं, तो एक अंदर की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, वो नई चीज सीख। शुरू शुरू में कितनी जिज्ञासा रहती है, ये भी सीख जाए, ये भी सीख जाए, ये भी सीख जाए, व्यंजनी ये सेवा करे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और सबसे के साथ समान संपर्क में आते हो भी ब्राह्मणों के, सीखेंगे नई नई बातें सीखेंगे, सेवा में किसको कैसे, कितनी क्यूरियोसिटी रहती है, वो हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। सीखने की भावना, सीखने की ललक अंदर से कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो सीखने की भावना उनकी अंत तक बनी रहती है, तभी वो आगे पढ़ते हैं, है ना। बचपन से लेकर अंत तक जिसको बहुत प्रतिष्ठित पद पर पहुंचना होता है, वो सीखने की ललक को कभी छोड़ते नहीं। जिज्ञासा प्रवृत्ति अंदर में बनी रहनी चाहिए, नई नई चीज सीखनी है। अर्थात मुरली में जो हम पढ़ते हैं उससे आज की मुरली में क्या नई चीज आई है, उसको सीखना है। बाजोली का खेल बाबा ने कहा कहां से शुरू होता है। अब मुरलियां तो कई बार सुना, लेकिन ये माथे से शुरू होता है। क्यों बोला माथे से? क्योंकि आत्मा इधर रहती है। अब ये क्या खाली सुन लिया, हाँ माथे से किसको सुनाने के लिए ठीक है, माथे से शुरू होता है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा क्यों माथे से शुरू होता है। और कई मुरली बाबा ने चोटी से भी बोला हुआ है, आज माथे से बोला है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए अंदर में, उस मुरलियों के, उन मुरलियों के प्रति जो जिनके अंदर डेली कुछ ना कुछ तो नवीनता होती है, उसको हमको अलग से करना। हमने क्या देखा, कोई भाई भाई, कोई भाई ऐसे होते हैं वो अलग अलग विषय पर टॉपिक इकट्ठा करते रहते हैं, करते 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 एक ही विषय पर कितना लंबा टॉपिक बन जाता है वो, लंबे समय का प्रयास करने के बाद। जैसे सेवा के बारे में क्या कहो, सब अलग अलग लिखा हो, खाली सेवा ही। ऐसा नहीं एक ही बार में हमको 4 या 20 सब्जेक्ट पकड़ लेने, आप खाली 5-6 महीने सेवा के ऊपर काम करना है। ये डेली मुरली में सेवा के बारे में बाबा क्या क्या आता है, योग के बारे में क्या आता है, या माया के बारे में क्या आता है, माया कैसे आक्रमण करती है, माया क्या क्या करती है, थप्पड़ मारती है, पंजा मारती है, हप कर लेती है, माया अजगर है, माया क्या क्या चूहा है, तो क्या चीज करती है। तो एक ही सब्जेक्ट पर लंबे समय से हमको रिसर्च करना उसके ऊपर। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए, तो लगेगा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा ने कहा स्टूडेंट हो तुम बच्चे, तो टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। कितना दिल में खराब लगता है कि वो अपने आप को सर्वेंट लगा कह रहा है। माना हम यहां पहुंच गए, इतने पतित बन गए, भिखारी बन गए, फिर भी बाबा हम कह रहे कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तो अंदर से जैसे दिल दुखता कि नहीं दुखता है? कि खाली सुन के आगे तो दिल दुखना चाहिए वो। अच्छा अगर सुनेंगे नहीं तो दिल दुखेगा कैसे? माया बैठी है अंदर में दिल से प्यार करने के लिए। तो कौन सा सेकंड, एक होता है कि एक ज्ञान हमको सेकंड में समझ में आ गया, लेकिन एक दूसरे किसी और सेकंड का हमको इंतजार है। और वो इंतजार ये है कि हमारे पुरुषार्थ में कौन सा वो है, ऐसा सेकंड आएगा जो तुरंत एकदम फास्ट चले जाएंगे, और वो सेकंड कभी भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी है, कभी भी वो सेकंड हो सकता है। बताया ना एक बंदर बंदरी की कहानी, सुना होगा है ना। बंदर बंदरी पेड़ पर बैठे थे, आकाशवाणी हुई ऊपर से कूद जाओ तो तुम परी बन जाओगे, परी परी ज्यादा बन जाओगे। तो बंदरी ने सेकंड में छलांग मार दी और वो परी बन गई। बंदर सोचता रह गया थोड़ा, उसने देखा तो परी बन गई, उसने मार दी छलांग, वो उसकी हड्डी पसली टूट गई। क्यों? क्योंकि इसमें निकल गया वो सेकंड का इंतजार, वो एक सेकंड था वो। तो ऐसा नहीं कि हम भी बाद में छलांग मारे और हमारी हड्डी पसली टूट गई। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी मिस नहीं करना है कि आज की मुरली मिस हो गई, भले सेवा है लेकिन फिर भी बाद में जरूर पढ़ो उसको, कभी पढ़ो। या दिन में नहीं, बहुत अगर सेवा में इतने बिजी हैं, रात को सोते समय पढ़ो, कभी भी पढ़ो, छोड़ो नहीं उसको। क्योंकि एक है पहले हमको ज्ञान समझने की नहीं, ज्ञान को सुनने के पहले संस्कार डालने पड़ेंगे। अगर हमको ज्ञान समझने या कोई बात नहीं है, लेकिन पहले हम संस्कार तो डालें सुनने के, कम से कम संस्कार धीरे धीरे डालेंगे, वो स्वतः ज्ञान फिर बैठता रहेगा। फिर एक एडिक्शन हो जाएगी, ज्ञान सुनने की एडिक्शन, और एडिक्शन के बिना आदमी रहता नहीं है। और वो एडिक्शन फिर सुनते सुनते हमारी रगों में समा जाएगी, है ना। जैसे संसार में जो बड़े बड़े अफीमची होते हैं, बहुत संसार में नशा तो होता है, हमने देखा है एक दो नशा किए हुए, इतना खराब होता नशा बात मत पूछो, है ना। एक भाई आए थे नॉर्थ के थे, यहाँ 2 साल पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आए थे। तो उनकी मिसिज ज्ञान में चलती, वो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो समझते थे, लेकिन अभी उनको इतना एडिक्शन हो गया, इतना एडिक्शन, एक सेकंड भी रह नहीं पाते उससे। फिर भी कैसे ना कैसे करके उनको मिसिज लेके आई ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो फिर हम भी मिलने के लिए गए थे, तो देखा था तो यहाँ लाने के लिए भी उनको तो पहले झूठ बोला कि आप, हम आपको बॉम्बे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ लेके आए और वहां से भी अफीम, वहां से फ्लाइट में आए और फ्लाइट में चीजें अलाउ नहीं होती हैं। लेकिन जैसे तैसे बोला, अगर बीच में तबीयत खराब होगी तो बिना इसके तबीयत ठीक नहीं होती, इसकी हलचल मचा देगा एकदम पूरी। तो वहां जैसे तैसे करके यहां पहुंचे और यहां भी देखा, ट्रीटमेंट किया, कुछ दिन ठीक रहा, फर्क पड़ा। प्रेस तो करनी पड़ती है, प्रेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एडिक्शन ऐसी है कि छूटती नहीं है, रगों में, खून में, नस नस में समा जाती है। तो देखा हम मिलने के लिए एक बार, तो उसको इतना एडिक्शन हुआ पड़ा, इतना वो मन उसका बौखला गया है कि हमको पकड़ के यहां ढूंढ रहा है, यहां ढूंढ रहा है, कुछ मिल जाए यहां पर, कहीं थैले भी ढूंढ रहा है, कहीं खटिया के नीचे ढूंढ रहा है। कितनी एडिक्शन खराब हो जाती, कितना नशा हो जाता वो। तो हमको ज्ञान की एडिक्शन ऐसे होनी चाहिए, कहां ढूंढू मुरली, कौन से पेज में क्या है, कितनी मुरलियां चलाई हैं, कौन सुनाएगा इस चीज को। तो हमको ज्ञान की एडिक्शन होनी चाहिए, ये है बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाए, उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे जैसे बाबा ने बोला ना, ज्ञान सुनाना एक अलग, दूसरा एक है ज्ञान सुनाने वाला, दूसरा कौन सा है, कल के मुरली में था, ज्ञान सुनाने वाला कौन है, उद्धव, और दूसरा कौन है, गोपी। तो हम ज्ञान हमारी रगों में समा जाए कि उसमें हम समाए जाए, जैसे ज्ञान बाबा का हमारी रगों में समा जाए, केवल सुनाने तक सीमित नहीं रहे, जो इंद्रियां जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगे। तो ये है कि क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा प्रवृत्ति हमारी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है माया अटैक करती है, एक तो यह क्यूरियोसिटी खत्म होती है तो अटैक करती है। नेक्स्ट है जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किस में, बहुत सारी बातों में कंपैरिजन होता है। एक तो संसार की तरह लौकिकता में होता है, साधनों में होता है, इसके पास ये साधन है, मेरे पास ये है, ये यहां घूम के आया, मैं यहां घूम अभी नहीं गया हूं, ये निर्बंधन है, हमको बंधन में बांध के रखा हुआ है, कंपैरिजन कर रहे हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसको भूल जाते हैं और कंपैरिजन करते 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 माया पूरा काम तमाम कर देती है। किसने कपड़े अच्छे पहने हैं, इसके कपड़े अच्छे हैं तो मेरे ऐसे हैं, मैं भी अभी नए कपड़े सिलाऊंगा एकदम बढ़िया से, इसका बैच बड़ा है, मेरा बैच छोटा है, इसकी थाली में ये चीज है, मेरी में, कल से मैं भी बनाऊंगा, इसकी साड़ी अच्छी है, मेरी साड़ी खराब है। ओम शांति उनमें आते समझने के लिए, तो कई बार हम गाइड करते हैं तो हम तो सामने बैठे होते हैं और सामने पार्टी बैठी होती है, तो अगर पीछे से कोई गुजरते हैं तो उनका ध्यान उधर जाता है, और जाता अगर किसी का चेहरा देखना लग जाता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं, मन हम समझ जाते हैं, या तो जूतों को देख रहा है, या उसकी साड़ी को देख रहा है, उसको कपड़े को देख रहा है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन जुड़ा हुआ है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, ये कंपैरिजन की भी एक माया है, खतरनाक माया है। अगर कंपैरिजन करना तो स्वयं का कंपैरिजन करना, कि कल जो मेरा पुरुषार्थ था आज उस पुरुषार्थ में क्या नवीनता है, क्योंकि कंपैरिजन कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ को नीचे ले जाता है एकदम। बहुत सारे प्रकार के कंपैरिजन है, छोटी छोटी बातों के, इसका ये दोस्त है, मेरे ये दोस्त है, इसके ज्यादा इसको सोचने इन्फॉर्मेशन ज्यादा, मुझे कम रहती है। इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा किसी को देखने सिवाय एक बाप के, फालो फादर है, फालो ब्रदर सिस्टर नहीं है, और यही माया अटैक करती रहती है सूक्ष्म रूप से, और दिन प्रतिदिन माया का रूप बहुत भारी बन जाता है, और जब वो बीमारी, माया की बीमारी नासूर बन जाती है तो पता चलता है अब तो बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और तब भी ऑपरेशन में जान भी जा सकती है, अर्थात माया की गोद में सिदाई। तो सूक्ष्म रूप से अपनी जांच करनी है, कहीं हम ऐसा कंपैरिजन तो नहीं कर रहे कि हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने आप को ही ठग रहे हैं, अपने आप से छल कर रहे हैं। तो देखना है कि कंपैरिजन की भी आदत, माया कंपैरिजन के रूप में हमारे अंदर ना प्रवेश कर सके। नेक्स्ट है कनेक्शन, हमारा बाबा से कनेक्शन ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर चोर अटैक करते तो क्या करते हैं, लाइट का कनेक्शन काट देते हैं, अंधकार, और अंधकार में डर, भूत प्रेत, अंधकार से डर जुड़ा हुआ है, तो माया भी हमारा ज्ञान का कनेक्शन कट कर देती है, विस्मृत। जैसे ज्ञान का कनेक्शन कट हुआ तो अंधेरा, अर्थात फिर पुरानी दुनिया हमारे अंदर में, पुरानी दुनिया क्या है, घोर अंधकार छाया हुआ है, घोर अंधियारा है, माया का ग्रैंड लगा हुआ है, तो माया की गिरफ्त में आ जाते हैं, कनेक्शन हमारा टूट जाता है, वो काट देती है। तो कनेक्शन को भी हमको टाइट करना है, रोज जांच करनी है कि बाबा के साथ हमारा कनेक्शन ठीक है। दिन प्रतिदिन वो कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है, कहीं लूज तो नहीं हो रहा, कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही उसमें, तो हमारा कनेक्शन भी ठीक होना चाहिए। तो कनेक्शन के रूप तोड़ने के रूप में माया अपना बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। अगर हमको कंपटीशन करनी है तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करनी है। कई बार कंपटीशन भी दो प्रकार का, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव है। कई बार हम दूसरे के पुरुषार्थ को देख के करते हैं, ये 2 बजे उठता ना मैं 1 बजे उठूंगा, ये भी गलत है। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना कर्म क्षेत्र है, हर आत्मा के अपने अपने हिसाब किताब है, हर आत्मा की सोच अपनी अपनी है, हिसाब किताब अपने अपने हैं। हमको अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार अपनी दिनचर्या स्थापित करनी है। जो पहले तो सबसे पहले जो सामान्य दिनचर्या है उसको मजबूत करना है, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना। ऐसे नहीं दूसरे को देख के 2 दिन तो पुरुषार्थ किया और तीसरे दिन ओम शांति, या फिर योग में बैठे बैठे नींद आ रही है। तो हमको जो सामान्य दिनचर्या है उसमें हमको अपने आप से उसको मजबूत करना है, अपने आप से कंपटीशन करना। हाँ, सीखना तो सबसे है, जो हमारे से आगे हैं पुरुषार्थ में उनसे सीखना जरूर है हमको, लेकिन कंपटीशन की फिराक में नहीं रहना है कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं। कोई किसी का पार्ट छीन नहीं सकता है, सबका पार्ट अपना अपना है, और अपने पार्ट हमारा यूनिक है। जो पार्ट हम बजा रहे हैं वो दूसरा नहीं बजा सकता है। बाबा ने कहा हर आत्मा अपने अपने पार्ट पर एक्यूरेट है, अपने अपने पार्ट में वो हीरो है, हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हर बच्चा बाबा का यूनिक है। पूरे मकान में अगर एक रोड़ा भी हटा दे तो कैसा मकान हो जाएगा, लेकिन उसकी पूरी अहमियत है। छोटा सा काला दाग लग जाए क्या होगा, कल था ना मुरली में दाग धब्बा लग जाता है, काला धब्बा अगर नेत्र खराब हो जाता है। तो यह कि हम अपने आप में यूनिक है, अपने अंदर कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं होनी चाहिए अपनी कमजोरियों के प्रति। अब जो हमारे से कई बार क्या होता है, पास जन्म के या माना इस पास जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म से पहले का जन्म है, उन पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हुए हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनको क्यों पकड़ के बैठे, छोड़ देने का है। छोड़ इसलिए देने क्योंकि उसको भगवान भी नहीं कुछ कर सकते, तो हम क्या करेंगे उसको पकड़ के। जब हमको बाबा ने बता दिया है कि तुम फुल स्टॉप लगाओ, बात खत्म होगी, भले मैंने कितने भी बुरे कर्म किए हुए हैं, बुरे कर्म करने के बाद भी उसने पकड़ा तो जरूर हमारे में विशेषता है, तभी तो पकड़ा ना। तो हमारे से कितने भी लाखों हजारों अरबों गुना बुरे कर्म हुए हैं वो छोड़ देने का भी, कितना अच्छा हमको मेथड दे के फुल स्टॉप लगा दो, भूल जाओ उसको, बीती सो बीती, उसको कुछ कर नहीं सकते। हाँ, सच्चे दिल से एक बार बाबा को बता दिया बस काम खत्म होगा, बार बार उसको पकड़े नहीं बैठ जाना, हो गया तो हो गया, काम खत्म। हमने जानबूझ के नहीं, क्योंकि हमको अज्ञानता थी, हमको तो पता ही नहीं था। अगर हम छोटे बच्चे को 2000 का नोट पकड़ा दे तो क्या करेगा, वो तो फाड़ देगा ना, उसको पता थोड़ा नहीं है, उसकी गलती भी नहीं है। तो हम भी तो ऐसे ही है ना, लेकिन जब उसको समझ आएगी तो फाड़ेगा वो। तो अब हमको समझ आ गई ना, पहले तो हमने अज्ञानता वश किया जो भी किया है, तो अब तो हमको समझ है ना, अब हम नहीं करेंगे। और फिर भी बार बार करते हैं तो फिर हमको अपने और जांच रखने की, गहराई से जांच रखने की जरूरत है। तो ये है कि कंपटीशन करना है तो अपने आप से ही करना है, प्रतिस्पर्धा। फिर नेक्स्ट है करेक्शन, दूसरों के करेक्शन करने के बजाय रोज अपनी करेक्शन करनी है। नहीं तो होता है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये ठीक नहीं है, श्रीमत ऐसे नहीं कहती है, परसों की मुरली में था ना तुम्हारा क्या जाता है, परसों की मुरली थी ना कि तुम्हारा क्या जाता है इसमें। अगर कोई भगवान के कहने पर नहीं सुधर रहा है तो हमारे कहने पर कैसे सुधरेगा। अगर हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अर्थात हम अपने को भगवान से ऊपर मान रहे हैं, तो करेक्शन करनी है, अपने आप की करेक्शन करनी है। हमारी शुभ भावनाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी, इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि हमारी शुभ भावना अगर दूसरी आत्माओं के प्रति है तो हमारे मौन के वाइब्रेशन उसको जरूर ठीक कर देंगे, लेकिन वो समय आएगा तब, क्योंकि बीज हमेशा समय पर अंकुरित होगा। धरती में लाखों बीज पड़े होते हैं लेकिन वो बरसात में नजर आते हैं, गर्मियों में थोड़े नहीं आएंगे, उसको पानी मिलेगा, वैसा माहौल मिलेगा, एटमोसफेयर मिलेगा, तो वो आएंगे बाहर। तो उसी तरह हमारी शुभ भावना, आज बाबा ने कहा तुम्हारी शुभ भावना का विरोध करते हैं, कब कहा था सकार मूल्य में, लेकिन आज वो ही शुभ भावना का विरोध नहीं करते। अभी अब वो शुभ भावना उनकी कैसे दिन में दिन प्रतिदिन बदल गई है। अब वो खुद ही कहते हैं कि संसार बदलने वाला है, विनाश होने वाला है। तो ये है कि हमको क्या सुना रहे थे लास्ट में, करेक्शन। करेक्शन नहीं करना किसी का, किसका करेक्शन करना है, अपने आप का करना है। रोज करेक्शन करना है कि कल से कुछ तो मैं अपने आप को करेक्ट किया। और करेक्शन करना भी सहज काम नहीं है, एक कर्मेंद्रियों को इतनी लत पड़ी है कि इनको पकड़े लाना एक बार इधर फिर चली जाती हैं। स्थूल तो फिर भी ठीक है, मन जो है ना भागता है, थोड़ा सा बिठाते हैं फिर देखते हैं तो आबू रोड पहुंच गया हुआ है, फिर पकड़े लाते हैं देखते हैं दिल्ली पहुंच गया हुआ है, फिर पकड़े लाते हैं लंदन पहुंच गया हुआ है। तो पकड़ के रखना उसको, उसको भगाने, अपने आप की करेक्शन करनी है, कैसे कौन सी खूंटी में उसको बांध के रखें ताकि वो बाहर उसको वहीं भोजन दे देना है। तो अपनी करेक्शन करनी है, दूसरों को करेक्शन नहीं करनी है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। हमको बाबा ने कहा जो सहयोगी वो सहज योगी बनता है। अगर हम कोऑपरेशन नहीं करते अर्थात माया अपना प्रभाव डालती है पूरा, हमारी थोड़ी सी भी मदद हमारे पुरुषार्थ के मार्ग खोल देती है, थोड़ी सी भी मदद। भाई भले हम किसी के थोड़ा सा मुस्कुराएं, सामने वाला हमको देख रहा है, वो बड़े प्यार से देख रहे हैं, हम उसके तरफ देख नहीं रहे हैं या उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो सोचेगा ये कितना अहम है इसके अंदर में। थोड़ा सा मुस्कुरा के जवाब दे, क्या पता उस मुस्कुराहट में उसका पता नहीं कौन सा दुख दूर हो जाए। अगर हमको कोई ओम शांति बोलता ठीक है, सामने वाला जवाब नहीं दे तो ठीक है अलग बात है, लेकिन अगर हम दे सकते तो जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमको कोई राम राम कहते तो राम राम से जवाब देना है, अपनी अकड़ नहीं दिखाने की, नहीं ओम शांति राम राम ही बोलना है, एक रिस्पेक्ट होता है सामने वाले का। अगर सामने वाला कोई सत श्रीकाल करे तो सत श्रीकाल ही कहना उसको, जैसे वो कह रहे वैसे खुश रहेगा। और कई बार ऐसे होता है वॉकिंग में जाते, कई बार हम सवेरे जाते, कई बार तो सामने वाले जिस तरीके से कहता ना उसी तरीके से, और धीरे धीरे फिर वो अपने आप ओम शांति करना शुरू कर देता है। तो थोड़ी सी हेल्प, छोटी सी, और हमारे बहुत बड़े जो जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं उनको परिवर्तन कर सकती है। जैसे एक बार था क्या, एक हमने कहीं पढ़ा था, किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि एक तीन सदस्यों का परिवार था, पति पत्नी और बच्चा। तो पति भी चला गया, बच्चा भी मर गया, केवल पत्नी रहेगी, आगे पीछे कोई नहीं कमाने खाने वाला, थोड़ा बहुत उनका रोजगार था। तो वो एकदम डिप्रेशन में चली गई, एकदम उदासी छा गई, जैसे जीवन से सारी खुशियां छीन गई, पूरा दिन परेशान रहती थी। तो अभी क्या कैसे चलाएगी जीवन को। तो फिर एक बार उसके घर में सर्दी के दिन थे, तो बाहर से एक छोटा बिल्ली का बच्चा आया, और बिल्ली का बच्चा आया तो उसके ना पांव में आके बैठ गया वो। तो उसको थोड़ा सा है कि इसको थोड़ा दूध पिला देती हूँ, तो दूध पिलाया और थोड़ा सा उसको हाथ फेरा तो जैसे उसके पांव से लिपने लग गया, तो पहली बार उसके मुख में इतने सालों का मुस्कान आई कि उसको भी देखो हेल्प करने के बाद उस कितना रियलाइज कर रहा है वो, उस हेल्प से उसकी मुस्कान वापस लौट आई। तो अगर हम किसी को छोटी सी हेल्प करते हैं, चाहे हम किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे किसी को पानी पिला रहे हैं या चाय पिला रहे हैं, जरूरी हमको ज्ञान योग से किसी की सेवा करनी है, वो ज्ञान योग हमारे दिनचर्या में प्रस्तुत होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, हमारे कर्मों से दिखाई देना चाहिए। क्योंकि कई बाबा ने कहा अंत में आत्मे ऐसे होंगे जो जिनके अंदर ज्ञान सुनने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, उनको आपको अपनी ताकत से उड़ाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी अगर हम हेल्प कर देते हैं तो हेल्प भी किसी के लिए किसी के रास्ते खोल देती है, किसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देगी, उसको भी जीना सके। हाँ, हम फिर उसके अंदर सीखने की इच्छा बढ़ेगी कि हम अभी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं इनसे। तो ये है कि कोऑपरेशन करते रहना। तो करेक्शन, कंपटीशन, क्यूरियोसिटी, कनेक्शन, करेक्शन, कंपटीशन, और क्या हुआ, कंपैरिजन। हाँ, कितने सात सी हो गए, सेवन सी थे, कोई भूल गया लगता है, कितने हुए, आठ हो गए, सात हो गए, कौन कौन से सात सेवन सी हुए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अभी याद करेंगे तो फिर भूलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि कितने लोग हमको याद कराएंगे अभी। कौन कौन से सेवन हुए, सबसे पहले था क्यूरियोसिटी, फिर कनेक्शन, करेक्शन, कंपैरिजन, कंपटीशन, कोऑपरेशन, सात हो गए, एक तो कोई और है, नहीं अब मैं नकल मार लेता हूं इधर, यहाँ लिखे थे हमने कंपनी, असली चीज दोहराई, संगत संग संग दोष से बचाओ, तो संग दोष के रूप में माया अपना बनाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कैसे कैसे माया अपना बनाने की फिराक में रहती है, तो हमको खुद ही चिंतन बढ़ाते रहना, चिंतन के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम प्रयास करें तो, नहीं तो हम प्रयास नहीं करते ना तो फिर धीरे 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 अंदर में उदासी के रूप में माया अंदर में बैठ जाती है। एक तो फिर मन ही नहीं करता है, मुरली पास में पड़ी हुई हाथ लगाने को मन नहीं करेगा, प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है कि इसको ग्रहण करने के लिए बुद्धि को शुद्ध बनाना, जो कल बाबा ने कहा ना तुमको मैंने गिफ्ट दिया है, कौन सा बुद्धि के लिए कहा था, सोने का बर्तन दिया है, अभी सोने सोने का बर्तन, तो अगर सोने के बर्तन में हम वैसा माल ही नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अंदर में पहले जैसा जो विष पड़ा हुआ वही काम करता रहेगा, और वो विष हमको अनेक प्रकार के माया के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ये ज्ञान जो है ना संजीवनी बूटी है, माया उस हमारे पुरुषार्थ को किसी तरीके से ग्रहण करने की कोशिश न करे, इसलिए इस ज्ञान को हमको अच्छी तरह से चबाते रहना है, चबा चबा के मेहन कर करके खा लेने का, ताकि हमारी नसों में दौड़ता रहे, जैसे दादी जान की कहते हैं जब मैं शरीर छोड़ दूंगी तब भी ज्ञान मेरे मुख से निकलता रहेगा, और उनकी इतनी ज्यादा उम्र की और इतनी ताकत की ये की चीज है ये ज्ञान। कैसे ज्ञान को एक शब्द पकड़ते हैं वो, और उस ज्ञान की कितनी गहराई में चले जाते हैं, इतनी एज में भी, और कितनी स्मृति की पावर देखो उनकी, वो पाकिस्तान सिंध हैदराबाद की बात एक एक बात अभी बताते हैं, पूरी लाइफ में कहां कहां कौन कौन से इंसिडेंट वो सब बता देंगे, वो सारा ज्ञान का तो बल है। जो भी हमारे यज्ञ की मूर्तियां हैं, दादियां हैं, उन्होंने ज्ञान के बल पर इतनी आत्माओं को संजोया संवारा है, तो उनका जो हमारा भी उनके प्रति दायित्व बनता है कि उनके नक्शे कदम पर चलकर हम बाबा की आशाओं को पूरा करें। तो ब्राह्मण जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है, इस ब्राह्मण जीवन को हमको ऐसे नहीं गवा देना है कि माया की छाया संभाल के रखना है, और इस जीवन से औरों के जीवन को भी हम बेहतर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, संभाल सके। ओम शांति शांति।